हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। कुछ देर बाद बाकी सब लोग डाइनिंग एरिया से उठकर लिविंग एरिया में वापस आ गए। आरना अभी किचन में चाय बना ही रही थी कि उसे अचानक अपने पीछे किसी के होने की आहट हुई। वो जल्दी से पीछे पलटी और अपने सामने करण को देखकर एक पल के लिए बुरी तरह घबरा गई, मगर अगले ही पल उसने खुद को शांत करते हुए करण से सवाल किया। आरना, सख्ती से, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? करण ईविल नज़रों से अपने होठों पर जीभ घुमाते हुए, मुझे प्यास लगी है। आरना अपने साइड में रखी बोतल उठाकर करण के पास पटकते हुए, ये लो और अब निकलो यहाँ से। करण गंदी सी मुस्कान के साथ आरना को ऊपर से नीचे देखते हुए, भाभी जी, बहुत भोली हैं आप, कुछ समझती ही नहीं। आरना घबरा कर अपने पल्लू को कसकर पकड़ते हुए, कहना क्या चाहते हो तुम? करण आरना का रास्ता ब्लॉक करके खड़ा होते हुए, यही कि मुझसे कुछ छुपा नहीं है। नम्या ने मुझे आपके और रिदांश भाई के रिश्ते के बारे में सब बता दिया है, इसीलिए मेरे सामने ये लवी डवी कपल बनने का नाटक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आरना करण की बातों और नज़रों से असहज होते हुए, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, जाओ यहाँ से। करण ठीक आरना के सामने खड़े होते हुए, क्या फ़ायदा भाभी जी, ऐसे इंसान के पीछे अपनी ज़िंदगी और इस बेतहाशा खूबसूरती को बर्बाद करने का, जिसे आपकी और आपकी खूबसूरती की ज़रा भर भी कद्र नहीं। गंदी सी मुस्कान के साथ, ज़रा नज़रें उठाकर तो देखें, आपके असली कद्रदान कब से आपकी नज़रें इनायत के लिए इंतज़ार में बैठे हैं। आरना करण की बात सुनकर वहाँ से जाने लगी, लेकिन करण एक बार फिर उसका रास्ता रोक लिया। आरना गुस्से से उसे घूरने लगी, आरना मेरा रास्ता छोड़ो वरना। करण निगरता से, वरना क्या भाभी जी, क्या करेंगी आप, क्यों बेवजह भाव खा रही हैं भाभी जी, आप बस मुझे खुश कर दीजिए, आई प्रॉमिस, बदले में मैं आपके इस सो कॉल्ड पति से कहीं ज्यादा खुश कर दूंगा आपको। आरना करण की बात सुनकर गुस्से से उसे मारने के लिए अपना हाथ हवा में उठाया, लेकिन करण बीच में ही उसकी कलाई पकड़ ली। आरना थोड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार उससे अपना हाथ छुड़ा ली। करण, भाभी जी, क्यों खामखा अपनी इस नाजुक कलाई को कष्ट दे रही हैं? आरना गुस्से और घिनौने एक्सप्रेशन के साथ, तुम्हें शर्म नहीं आई मुझसे इतनी घटिया बात करते हुए? अगर सबको पता चलेगा तो तुम जानते भी हो कि तुम्हारा क्या हश्र होगा। करण गंदी सी मुस्कान के साथ, किसकी बात कर रही हैं आप, अपने सिर्फ उस नाम के पति की, उससे मेरी शिकायत करेंगी या फिर नम्या, जो आपके वजूद से भी नफरत करती है, उसे जाकर मेरी शिकायत लगाएंगी? यू नो वॉट भाभी जी, आप अगर चीख चीख कर भी सबको सच बताएंगी तो भी कोई कभी भी आपका यकीन नहीं करने वाला, क्योंकि इन सबकी नज़रों में आप एक गोल्ड डिगर से ज़्यादा कुछ भी नहीं, इसीलिए आपकी भलाई और फ़ायदा इसी में है कि मेरी बात मान लीजिए और बस एक बार मुझे ऐसे ही खुश कर दो जैसे तुमने रिदांश को किया और वो एक पल में तुम्हें इस घर में उठा लाया। आई प्रॉमिस, किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा, ये बात सिर्फ हम दोनों के बीच रहेगी और बस एक बार आप मेरी बात मान लीजिए, उसके बाद मैं आपको कोई भी कमी नहीं होने दूंगा। आरना करण की घटिया और घिनौनी बात सुनकर अब और अपने आंसुओं को नहीं रोक पाई और वो बेबसी से सुबकने लगी। करण जैसे ही आरना को छूने के लिए अपना हाथ बढ़ाता है, आरना झटके से एक कदम पीछे होकर किचन के काउंटर से टिक कर खुद में ही सिमट गई। भले ही रिदांश उसे हर लम्हा बेइज्जत करता था और उसकी करीबी से उसकी धड़कनें बढ़ जाती थीं, लेकिन आज तक आरना को कभी भी रिदांश की बातों से ऐसी गंदी असहजता या घिनौनापन महसूस नहीं हुआ था और ना ही आज तक इस किस्म की ऐसी घटिया बातें कभी रिदांश ने आरना से की थीं। आरना को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और आखिर हर बार उसी की ऐसी परीक्षाएं क्यों होती हैं, और ये सब सोच सोच कर ही आंसू लगातार बह रहे थे। करण उदास होने का नाटक करते हुए, भाभी जी, अगर आप ऐसे रोएंगी तो मेरा दिल टूट जाएगा। करण अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि उसके कानों में एक आवाज़ पड़ी जो किसी और की नहीं बल्कि रिदांश की थी। रिदांश की आवाज़ सुनकर करण के फाख्ते ही उड़ गए थे और डर और घबराहट से उसके चेहरे का रंग फीका पड़ गया था। रिदांश अपने हमेशा जैसे सख्त अंदाज के साथ करण से, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। कुछ देर बाद बाकी सब लोग डाइनिंग एरिया से उठकर लिविंग एरिया में वापस आ गए। आरना अभी किचन में चाय बना ही रही थी कि उसे अचानक अपने पीछे किसी के होने की आहट हुई। वो जल्दी से पीछे पलटी और अपने सामने करण को देखकर एक पल के लिए बुरी तरह घबरा गई, मगर अगले ही पल उसने खुद को शांत करते हुए करण से सवाल किया। आरना, सख्ती से, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? करण, ईविल नज़रों से अपने होठों पर जीभ घुमाते हुए, मुझे प्यास लगी है। आरना अपने साइड में रखी बोतल उठाकर करण के पास पटकते हुए, ये लो और अब निकलो यहाँ से। करण गंदी सी मुस्कान के साथ आरना को ऊपर से नीचे देखते हुए, भाभी जी, बहुत भोली हैं आप, कुछ समझती ही नहीं। आरना घबराकर अपने पल्लू को कसकर पकड़ते हुए, कहना क्या चाहते हो तुम? करण आरना का रास्ता ब्लॉक करके खड़ा होते हुए, यही कि मुझसे कुछ छुपा नहीं है, नम्या ने मुझे आपके और रिदांश भाई के रिश्ते के बारे में सब बता दिया है, इसीलिए मेरे सामने ये लवी डवी कपल बनने का नाटक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आरना करण की बातों और नज़रों से असहज होते हुए, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, जाओ यहाँ से। करण ठीक आरना के सामने खड़े होते हुए, क्या फ़ायदा भाभी जी, ऐसे इंसान के पीछे अपनी ज़िंदगी और इस बेतहाशा खूबसूरती को बर्बाद करने का, जिसे आपकी और आपकी खूबसूरती की ज़रा भर भी कद्र नहीं। गंदी सी मुस्कान के साथ, ज़रा नज़रें उठाकर तो देखें, आपके असली कद्रदान कब से आपकी नज़रें इनायत के लिए इंतज़ार में बैठे हैं। आरना करण की बात सुनकर वहाँ से जाने लगी, लेकिन करण एक बार फिर उसका रास्ता रोक लिया। आरना गुस्से से उसे घूरने लगी, आरना मेरा रास्ता छोड़ो वरना। करण निडरता से, वरना क्या भाभी जी, क्या करेंगी आप, क्यों बेवजह भाव खा रहे हैं भाभी जी, आप बस मुझे खुश कर दीजिए, आई प्रॉमिस, बदले में मैं आपके इस सो कॉल्ड पति से कहीं ज्यादा खुश कर दूंगा आपको। आरना करण की बात सुनकर गुस्से से उसे मारने के लिए अपना हाथ हवा में उठाया, लेकिन करण बीच में ही उसकी कलाई पकड़ ली। आरना थोड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार उससे अपना हाथ छुड़ा ली। करण, भाभी जी क्यों खामखा अपनी इस नाजुक कलाई को कष्ट दे रही हैं? आरना गुस्से और घिनौने एक्सप्रेशन के साथ, तुम्हें शर्म नहीं आई मुझसे इतनी घटिया बात करते हुए? अगर सबको पता चलेगा तो तुम जानते भी हो कि तुम्हारा क्या हश्र होगा। करण गंदी सी मुस्कान के साथ, किसकी बात कर रही हैं आप? अपने सिर्फ उस नाम के पति की? उससे मेरी शिकायत करेंगी, या फिर नम्या, जो आपके वजूद से भी नफरत करती है, उसे जाकर मेरी शिकायत लगाएंगी? यू नो वॉट भाभी जी, आप अगर चीख चीख कर भी सबको सच बताएंगी तो भी कोई कभी भी आपका यकीन नहीं करने वाला, क्योंकि इन सबकी नज़रों में आप एक गोल्ड डिगर से ज्यादा कुछ भी नहीं, इसीलिए आपकी भलाई और फायदा इसी में है कि मेरी बात मान लीजिए और बस एक बार मुझे ऐसे ही खुश कर दो जैसे तुमने रिदांश को किया और वो एक पल में तुम्हें इस घर में उठा लाया। आई प्रॉमिस, किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा, ये बात सिर्फ हम दोनों के बीच रहेगी और बस एक बार आप मेरी बात मान लीजिए, उसके बाद मैं आपको कोई भी कमी नहीं होने दूंगा। आरना करण की घटिया और घिनौनी बात सुनकर अब और अपने आंसुओं को नहीं रोक पाई और वो बेबसी से सुबकने लगी। करण जैसे ही आरना को छूने के लिए अपना हाथ बढ़ाता है, आरना झटके से एक कदम पीछे होकर किचन के काउंटर से टिककर खुद में ही सिमट गई। भले ही रिदांश उसे हर लम्हा बेइज्जत करता था और उसकी करीबी से उसकी धड़कनें बढ़ जाती थीं, लेकिन आज तक आरना को कभी भी रिदांश की बातों से ऐसी गंदी असहजता या घिनौनापन महसूस नहीं हुआ था, और ना ही आज तक इस किस्म की ऐसी घटिया बातें कभी रिदांश ने आरना से की थीं। आरना को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और आखिर हर बार उसी की ऐसी परीक्षाएं क्यों होती हैं, और ये सब सोच सोच कर ही आरना के आंसू लगातार बह रहे थे। करण उदास होने का नाटक करते हुए, भाभी जी अगर आप ऐसे रोएंगी तो मेरा दिल टूट जाएगा। और करण अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि उसके कानों में एक आवाज़ पड़ी जो किसी और की नहीं बल्कि रिदांश की थी। रिदांश की आवाज़ सुनकर करण के भागते ही उड़ गए थे और डर और घबराहट से उसके चेहरे का रंग फीका पड़ गया था। रिदांश अपने हमेशा जैसे सख्त अंदाज के साथ करण से, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? दूसरी तरफ जब आरना के कानों में रिदांश की आवाज़ पड़ी तो वो जल्दी से करण का ध्यान भटकाकर बिना कुछ सोचे समझे लगभग भागते हुए आकर किचन के बाहर खड़े रिदांश के सीने से लग गई और अपनी मुट्ठियों में कसकर रिदांश की शर्ट को पकड़कर उस पर अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। आज वो और उसका दिल ही जानते थे कि इस वक्त रिदांश को यहाँ पाकर और उसकी आवाज़ सुनकर उसके दिल को कितना सुकून मिला था। भले ही हमेशा वो उसके खतरनाक अंदाज से डरती आई थी, लेकिन इस लम्हे रिदांश के सिवा उसके दिल को और कोई सुरक्षित जगह नजर नहीं आ रही थी। दूसरी तरफ रिदांश आरना के इस रिएक्शन पर स्तब्ध था, हालांकि उसने कुछ पल बाद ही अपने सरप्राइज्ड एक्सप्रेशन को छुपा लिया था। जाहिर है रिदांश का सरप्राइज्ड होना आम बात थी, क्योंकि आज से पहले आरना ने कभी भी ऐसी हरकत तो दूर की बात है, उसने कुछ मिनट तक भी लगातार रिदांश से नजरें मिलाकर भी बात नहीं की थी। रिदांश का ध्यान आरना से तब हटता है जब नम्या वहां आती है और उसकी आवाज़ उसके कानों में पड़ती है। नम्या, आरना को रिदांश के गले लगे देखकर, इसे क्या हुआ? करण, झूठ बोलते हुए, वो दरअसल मुझे प्यास लगी थी तो मैं यहाँ आ गया। यहाँ आकर मैंने भाभी जी को छिपकली से डरते हुए देखा, तो बस उसी को भगाने में मैं उनकी मदद करने लगा। झूठी हंसी हंसते हुए, लेकिन देखिए ना, भाभी जी तो बच्चों की तरह किस कदर डर गई उस छिपकली से। नम्या, आरना को घूरते हुए, इसे तो बस हमेशा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना होता है, और खासकर मर्दों का। नम्या की बात सुनकर भी आरना कोई रिस्पांस नहीं देती, और देती कैसे, क्योंकि उसके दिमाग और कानों में तो सिर्फ करण की घटिया बातें घूम रही थीं। रिदांश गंभीरता और सख्त एक्सप्रेशन के साथ नम्या से, तुम्हें कुछ काम था यहाँ? नम्या, जी भाई, अंकल आंटी आप लोगों को बुला रहे हैं।
इतना कहकर आरना जल्दी से वहाँ से अपने कमरे की तरफ दौड़ पड़ती है, और रिदांश कन्फ्यूज्ड होकर उसे जाता हुआ देख रहा था। रिदांश मन में, इतना तो तय है कि कुछ तो ज़रूर हुआ है, वरना जो लड़की मेरे आसपास भी भटकने से इतना कतराती है, वो आज ऐसे मेरे गले? सोचते हुए, या फिर नम्या ही सही है, और ये सब ये सिर्फ अट्रैक्शन के लिए ही कर रही है, लेकिन आज से पहले उसने कभी ऐसा कुछ बिहेव नहीं किया, तो फिर आज ही क्यों? तभी एक बार फिर से प्रीशा रिदांश को बुलाने के लिए आती है, और वो अपनी सारी बातों और ख्यालों को इग्नोर करते हुए उसके साथ बाकी लोगों के बीच चला जाता है।